ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज तक हम सुनते आए कि ऋषि मुनि तपस्वी जो लोग थे, वर्षों जंगलों में तपस्या करने के बाद शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते थे, परंतु परमपिता परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया उसके द्वारा हम किस प्रकार से अष्ट शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, अष्ट भुजाधारी देवियों के अंदर कैसे वो शक्तियां आई। तो आज का बहुत सुंदर विषय राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सुमन बहन विराजमान है। हम करतल ध्वनि से सुमन बहन जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका जन्म कर्नाटका में एक धार्मिक परिवार में हुआ, बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता की तरफ रुचि थी और आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की और 1992 में आपने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारत के कोने कोने में आपने ईश्वरीय सेवार्थ यात्राएं की और साथ साथ विदेश में विशेष रूप से यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, मॉरिशस, नीदरलैंड आदि में भी आप ईश्वरीय सेवा अर्थ यात्राएं करते रहते हैं। रायोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ट्रेवल विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। जो भी विशेष कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंसेस आदि, रायोग शिविर आदि होते रहते हैं या हेड ऑफिस में, उसमें भी आप विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। आपके प्रिय विषय हैं सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लिविंग वैल्यूज आदि आदि। और आपका आज का विषय बहुत सुंदर, सभी बड़े प्यार से ध्यान से सुनेंगे कि इन शक्तियों को हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। तो आप सभी बड़े प्यार से ध्यान से सुनेंगे राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ओम शांति।
ओम शांति। कल सारा दिन आपने सेशन सुने, राजयोग किसको कहा जाता है, राजयोग कैसे हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं राजयोग से लाभ क्या है, क्योंकि इस संसार में जो भी हम करते हैं बिना कोई लाभ, कोई बेनिफिट अगर नहीं है तो हम करने के लिए तैयार होते हैं? कुछ भी प्राप्ति नहीं है, हम कहते हैं फालतू क्यों वेस्ट करे टाइम। तो ऐसे ही आप सभी इतने दूर दूर से यहां आए हैं, कुछ तो लक्ष्य लेकर के आए हैं ना। क्या लक्ष्य लेके आए हैं? कुछ सीखने के लिए, आत्म उन्नति की बातें सीखे, कैसे हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के ओर चले, वो बातें हम सुने ये समझे, वो उसके लिए आप यहां आए हैं। तो राजयोग भी जब हम करते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो प्राप्तियां क्या हैं, आपको क्या लगता है? कल सारा दिन आपने सुना तीन कदम क्या है, तीन स्टेप्स क्या है राजयोग के लिए, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा के साथ कैसे हम संबंध जोड़े। ये तीन बातें तो स्पष्ट रूप से सभी ने सुना कल। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर किया तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या प्राप्ति हो रही है आपको, क्या प्राप्ति हो रही है, क्या कहेंगे? शांति मिलती, मन की शांति मिलती है, और क्या मिलता है? हाँ, टेंशन से फ्री हो जाते हैं, पूरा काम करने से अच्छाई आगे आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है जीवन में मेडिटेशन करने से। जिंदगी में कैसे अप्लाई करें डेली लाइफ में? हाँ जी, मन को कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है ना। तो ये सारी प्राप्तियां तो है ही, उसके साथ साथ हमें प्राप्त होती है अष्ट शक्तियां। जैसे कहते हैं ना, मनोबल चाहिए, मन की शक्ति, किसी ने कहा मनोबल चाहिए। मनोबल माना क्या है? शारीरिक ताकत तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत भारी चीज हम उठा सकते हैं या कुछ किसी के साथ हम कुश्ती कर सकते हैं, तो शारीरिक बल वहां दिखाई देता है, लेकिन मन की शक्ति कहां से दिखाई देगा? जब हमारे सामने कोई परिस्थितियां आती हैं, उसको हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हम सामना करते हैं, उसके आधार से हमें पता चलता है कि मन की शक्ति मेरे अंदर कितना है। और अलग अलग परिस्थितियां हैं जीवन में, एक ही प्रकार की परिस्थितियां तो नहीं आता है। अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग शक्ति की जरूरत होता है। जैसे बीमारियां बहुत सारी हैं, हर एक बीमारी के लिए एक ही मेडिसिन चलता है? नहीं चलता। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन की जरूरत है। ऐसे अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग शक्तियों की जरूरत होती है। तो वो शक्तियां कौन सी है? क्योंकि जब हम उन शक्तियों को धारण करते हैं जीवन में, जब हम उन शक्तियों को धारण करके कर्म में हम लाते हैं, तब जाकर के मन की शांति आती है। अगर कोई परिस्थिति आई जहां मुझे सहन करना है, वहां मैं सहन नहीं कर रही हूं, मन की शांति आएगी? हाँ, लड़ाई झगड़े के संकल्प चल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष से मन भरा हुआ है, वहां मन की शांति होगी? नहीं। मन की शांति जो है, शांति और सुख, ये दोनों जो है वो अल्टीमेट रिजल्ट है। मन की शांति कहीं भी खो गया माना, कोई ना कोई शक्ति की कमी मेरे अंदर है, इसीलिए सुख और शांति मेरे जीवन में नहीं है। तो वो रिजल्ट है। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें इन शक्तियों को समझना होगा, और कौन से परिस्थितियों में इन शक्तियों को हम प्रयोग कर सकते हैं वो भी हमें समझना होगा, तब जाकर के हम इम्प्लीमेंट करें, धारण करें, तब मन की शांति आएगी, सुख आएगा जीवन में, है ना। तो इसलिए शक्ति जब हम कर कहते हैं भक्ति मार्ग में, देवियों को क्यों पूछते हैं, दुर्गे को क्यों पूछते हैं? शक्ति की प्राप्ति के लिए, है ना। और माँ दुर्गे के हाथों में कितने हाथ है? अष्ट भुजा है। अष्ट भुजाओं में एक एक भुजा में एक एक शस्त्र है, और शस्त्र किसका प्रतीक है? शस्त्र किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। भुजाएं भी शक्ति का प्रतीक है, और शस्त्र भी शक्तियों का प्रतीक है। और वो देवी जो भी देवियां हैं उनको कहते हैं शिव की शक्तियां हैं, शिव से उत्पन्न हुई शक्तियां हैं। माना वो शक्ति अगर हमें जीवन में धारण करना है, केवल पूजने से वो शक्ति मेरे अंदर नहीं आ जाता, मुझे उस शिव के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। जब मैं आत्मा शक्ति उस शिव के साथ संबंध जोड़ती हूँ, फिर मुझ शक्ति के, मुझ आत्मा के अंदर शिव के सभी शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर आ जाती है ना। कोई देवी देवताएं कौन है, तो हम आत्माएं हैं। तो हम आत्माओं के अंदर वो शक्ति, वो गुण जब आ जाती है, वो सर्वगुण संपन्न कहलाती है ना। तो इसीलिए, और ये तो संबंध जोड़ना ही है, योग तो करना ही है, तो वो शक्तियों की प्राप्ति के लिए दूसरी बात है, समझना होगा ये अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं। और इस चार्ट में अष्ट शक्तियों का जिक्र है। सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति या पावर टू विड्रॉ। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कछुआ है। और कछुए की स्पेशलिटी क्या है, जब चाहे तब अपने हाथ पैर को फैला सकता है, तब जब चाहे तब वो अंदर विड्रॉ कर सकता है, सिकुड़ कर मना अंदर ले सकता है। और ऊपर का जो शेल है उसका, उसकी जो शरीर है वो बहुत ही हार्ड है, और अंदर की जो शरीर है उसका वो बहुत ही सॉफ्ट है। उसके ऊपर कोई कूदे भी, पत्थर भी फेंके, कुछ भी करे, तो वो सुरक्षित है अंदर। जब भी उसको डर लगता है वो अंदर अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, और ऊपर से कोई भी कुछ भी करे उसको डर कुछ नहीं होता। ऐसे ही हम सभी के लिए, और ऐसे कौन सी जगह है जहां हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, जब भी डर लगे वहां फट से जाए, और वहां किसी भी प्रकार के डर नहीं है, एकदम सुरक्षित है। कौन सी जगह है, बाबा के पास। ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर तक पहुंचने के लिए यहां से जो खींच होती है ना, ग्रेविटी की पुल इतना ज्यादा है, तो ऊपर जाने नहीं देता है कई बार। जब दुख दर्द है, परेशान है आप, तब बैठ करके मेडिटेशन कर पाएंगे। एकाग्रता ही नहीं है तो कैसे हम मेडिटेशन करें, है ना। तो बहुत ही सुरक्षित जगह है अपने आत्मिक स्मृति, अपने आत्मिक स्थिति। क्यों ऐसे है, क्योंकि सबसे बड़ा डर इस दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर, मर जाने का डर। और जब हमें ये स्मृति आ जाती, ये समझ आ जाता है कि मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, और ये शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और वो दूसरे प्रकार के डर कौन कौन से होते हैं, कुछ ना कुछ खो जाने का डर, कहीं ये लोग मेरे से दूर ना हो जाए, ये चीजें मेरे से छूट ना जाए, ये ना मेरे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, कुछ ना कुछ छूट जाने का डर, कुछ ना कुछ लॉस होने का डर। डर के कारण से व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। तो वो डर हम कैसे निकाल सकते हैं, कि ये समझ जब है कि ये जो भी इस दुनिया में है ना, चाहे वो लोग हैं, चीजें हैं, धन है, जो भी पोसेशंस है, हमारी प्रॉपर्टी है, एक ना एक दिन छोड़ के तो जाना है। हमेशा मेरे साथ नहीं है वो, कुछ दिन पहले मेरे साथ नहीं था, मेरे साथ आ गए सभी, सब कुछ मेरे साथ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा। हम सभी मुसाफिर हैं, और मुसाफिर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं लोग, संबंधित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और चलते 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 कहीं ना कहीं मुझे उतरना पड़ेगा, सबको छोड़ करके उतरना पड़ेगा, है ना। जब ये समझ है तो डर निकल जाता है। और मैं वो समझ कब आएगा, जब मैं समझती हूँ, बार बार ये अनुभव हम करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, बार बार केवल समझ नहीं है लेकिन बार बार अनुभव करने की बात है। केवल मेडिटेशन करते समय मैं ये समझूं कि मैं आत्मा ब्रकुटी के बीच में बैठी हूं, लेकिन फिर 10-15 मिनट के बाद जब योग पूरा हो जाता है, जब बाहर निकलते हैं, वही के वही शरीर समझ करके हम कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, तो फिर आत्मा में वो जो बल भरा था फिर से वो कम होता जाता है। तो इसलिए कार्य व्यवहार में रहते हुए भी हमें ये स्मृति में रहने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक आत्मा है। ये स्मृति बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब हम संबंध निभाते हैं तभी भी हमें इस स्मृति की सख्त जरूरत है। आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पावर टू विड्रॉ, जब हम सब कुछ समेट लेंगे तो घर बार भी छोड़ना पड़ेगा। सबसे समेटना माना घर बार भी छोड़ जाएं क्या? संबंध, जो संबंध हमारा है, पति पत्नी बच्चे जो सभी, जो इतना बड़ा हमारा परिवार है, सबके साथ संबंध जोड़ना है, संबंध निभाना है, संबंध नहीं निभाना है, क्या कहेंगे, संबंध तो निभाना है। इस संसार में जब रह रहे हैं जो संबंध है हमारा वो तो निभाना ही है, लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं ना, मैं आत्मा हूं, सामने वाला व्यक्ति भी आत्मा है, वो संबंध अटूट बनते जाते हैं। जो संबंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी रीति निभा पाते हैं। वो कैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कहे कि एक शहर में सर्जन है, बहुत सारे सर्जरीज उन्होंने किया हुआ है, और एक दिन अचानक उनके ही हॉस्पिटल में उनके 20 साल का बेटा उस स्ट्रेचर पर उनको लेके आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल में, और वो देख करके दंग रह गए। क्या हुआ कि उनको बाइक पे जा रहा था बेटा और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया नजदीक यही हॉस्पिटल था उनके पिताजी का, तो वो वहां लेके आए, और अभी जो डॉक्टर है, पिता है, जो बेटे को देख करके, केवल थोड़ा बहुत स्टिचेस ही लगाना है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं करना है, थोड़ा बहुत 4-5 स्टिचेस ही लगाना है, क्या वो डॉक्टर स्टिचेस लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? इसके पहले इतने सारे पेशेंट्स आए थे उनके हॉस्पिटल में, सबको ठीक करके भेजे थे, बहुत जाने माने डॉक्टर है उस शहर के, उनके जो ऑपरेशन से बहुत ही सक्सेसफुल जाता है, लेकिन आज इस व्यक्ति को देख करके उनके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्यों कांप रहे हैं? हाँ, ये जो अटैचमेंट है ना, जहां प्यार है तब हम जो करना चाहे वहां हम कर सकते हैं, लेकिन जहां अटैचमेंट है ना, बुद्धि ब्लॉक हो जाता है अटैचमेंट के कारण से, मोह के कारण से बुद्धि बंद हो जाता है, बंद होने के कारण से उस समय क्या करना है वो नहीं कर पाते। कहीं माओं को ये अनुभव होगा, अगर बच्चे एकदम, बच्चों के एकदम बुखार चढ़ गया है, 102 103 चढ़ गया है, तो उस टाइम पे क्या करना है, सोचता है? नहीं सोचता है। क्यों? एकदम से बुद्धि ब्लॉक हो गया कि उस टाइम पे पता नहीं क्या करना है, नहीं समझ में आता है। जहां प्यार, हाँ हम कहते हैं कि प्यार रखना चाहिए, प्यार नहीं, प्यार होना चाहिए, लेकिन मोह के कारण से बुद्धि ब्लॉक हो जाता है। तो मोह को कैसे हम निकाले? बार बार ये पावर टू विड्रॉ करने की जरूरत है। कि अगर वो सर्जन, उनको क्यों प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पे, क्योंकि पहले जो पेशेंट्स आ रहे थे उनके साथ एक ही संबंध हुआ करता था, डॉक्टर और पेशेंट का संबंध, लेकिन अभी जो पेशेंट आया उस पेशेंट के साथ ऑलरेडी एक गहरा संबंध है, बच्चे और पिता का संबंध है, उस संबंध से अपने बुद्धि को शिफ्ट करके डॉक्टर और पेशेंट के संबंध में शिफ्ट नहीं कर पाए। एक संबंध को छोड़ करके दूसरे संबंध में शिफ्ट होने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। एक ही संबंध के कारण से वो बुद्धि वहीं खींच रहा है, समय अनुसार जो मुझे शिफ्ट करना है वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो संबंध निभाना है वो एक्यूरेटली नहीं निभा पाते हैं, है ना। तो ये जरूरी है, शिफ्टिंग करने की जरूरत है। और शिफ्ट करने के लिए क्या करने की जरूरत है, शिफ्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, इतना जकड़ गया है बुद्धि उस पर्टिकुलर संबंध में, उसको हमें चुड़वाना पड़ेगा। कैसे हम चुड़वाएं, बार बार हम ये स्मृति अपने अंदर लाए कि मैं आत्मा हूं, डॉक्टर नहीं हूं, आत्मा हूं, डॉक्टर का रोल निभा रहा हूं, मैं आत्मा हूं, पिता का रोल निभा रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फ्रेंड का रोल निभा रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पति का रोल निभा रहा हूँ। ये जो भी संबंध है, अलग अलग लोगों के साथ मेरा अलग अलग संबंध है, केवल मेरा एक पार्ट है, केवल मेरा एक रोल है, लेकिन वास्तव में हम सभी कौन है, आत्माएं है ना। तो ये स्मृति बार बार लाने की जरूरत है। जब हम ये नहीं लाते हैं ना, तो क्या होता, इतने सारे संबंध जो हम सुबह से शाम तक हम निभा रहे हैं, एक न एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ संबंध या फिर रोल के साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। मान लीजिए समाज में मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, बहुत कुछ कमा रही हूँ, या बहुत मेरे मान सम्मान है, या फिर हम कहें कि कोई भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ मेरा इतना अटैचमेंट हो जाता है। अगर मेरा रिटायरमेंट हो रहा है 6 महीने के बाद, और रिटायरमेंट होने के बाद भी साथ साथ डेसिग्नेशन में क्या लगाते रहते हैं हम, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो निकल गया ना, वो पोजीशन तो निकल गई ना मेरे से, फिर भी हम एक्स या फॉर्मर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उस पोजीशन से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज से हम, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। वो पोजीशन मेरे से निकल जाने के बाद भी उसके साथ मैं चिपकी हुई हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मिल रहा है ना, भले उतना नहीं मिल रहा है लेकिन रिकॉग्निशन तो, हाँ ये तो फलाने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी पहले, तो ये रिकॉग्निशन की इच्छा, तो वो अटैचमेंट होने के कारण से फिर जो दूसरे हमारे संबंध है या रोल है वो अच्छी रीति वो नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि बार बार बुद्धि एक पर्टिकुलर संबंध या रोल के साथ अटैचमेंट है। इसलिए सब संबंध मुझे अच्छी रीति निभाना है, सब पार्ट मुझे अच्छी रीति निभाना है, तो फिर क्या चाहिए, पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस शक्ति को धारण करने के लिए क्या चाहिए, आत्मिक स्मृति, बार बार अपने को आत्मा समझते हुए ये सभी मेरा पार्ट है ये स्मृति में लाने की जरूरत है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। जैसे कोई भी यात्रा में जाते हैं तो सूटकेस और वो सब बिस्तर सब लेके जाते हैं, आप भी इतने दूर दूर से आए हैं, लगेज तो लेके आए हैं ना, सूटकेस लेके आए हैं, तो कितने सूटकेस लेके आए हैं, एक सूटकेस ले आए हैं, चार सूटकेस लेके आए हैं, दो सूटकेस लेके आए, कितने लाए हैं, एक लाए हैं, एक ही लाए हैं, क्यों, चार लेके आते, थोड़ा बहुत ठंडी के दिन है, अच्छी रीति स्वेटर शॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आते तो आराम से रह सकते थे ना, क्यों नहीं लेके आए, समेटने में मुश्किल हो जाता है, क्यों नहीं लेके आए, आराम से थोड़ा बहुत ज्यादा लगेज लेके आते हैं ना, थोड़ा आराम से धोने की जरूरत नहीं है, कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, तो चार दिन के लिए जितना कपड़ा चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके आते तो आराम से रह सकते थे ना, क्यों नहीं लाए। उठाना मुश्किल है, कूली कर ले, ट्रेन से ही तो आए ना, तो कूली कर लेते थे, आपको खुद को उठाना थोड़ी है। फिर भी नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, क्योंकि जितना ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता। चिंता, एक सूटकेस है तो बर्थ के नीचे डाल करके निश्चिंत होकर के सो गए, लेकिन चार पांच या दस सूटकेस है मान लीजिए, तो फिर एक तो जगह नहीं होती, लड़ते रहो जगह के लिए लोगों के साथ, और दूसरी बात अगर रात को बहुत ऐसे जगह से हम अगर ट्रेन गुजर रही है जहां चोरियां बहुत होती है तो क्या हो जाता, नींद आएगी, नींद आएगी नहीं, रात भर गिनते रहेंगे, बार बार हर एक घंटे में हर स्टेशन के पास में उठ उठ करके गिनते रहेंगे मेरे सभी लगेज है कि नहीं है। जितना ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता, चिंता परेशानी है ना। ऐसे ही जीवन को भी एक यात्रा कहा जाता है, राइट। तो जीवन रूपी यात्रा में एक्स्ट्रा लगेज कौन सी है, जो अनावश्यक हम ढोते रहते हैं, अनावश्यक हम रखते रहते हैं कि रहने दो मन के मन में रखते रहते हैं, रहने दो रहने दो रहने दो। अनावश्यक लगेज कौन सी है, स्ट्रेस। नेगेटिविटी जो है वो तो नेगेटिव है ही, जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो वो नेगेटिव है ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगेज है ना वो कभी कभी काम भी आ जाते हैं, कभी कभी ये मना कभी कभी यूज भी हो जाता है। एक्स्ट्रा लगेज है हमारे मन के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, जो अनावश्यक हम सोचते रहते हैं। वो अनावश्यक सोच या वेस्ट थॉट्स कौन से हैं, तीन प्रकार के वेस्ट थॉट्स से। सबसे पहली बात है कि पास्ट के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल के पहले क्या हुआ था, देखा उसको मैंने इतना मदद किया था फिर भी उसने धोखा दे दी, देखा इसने हो गया वो हो गया, तो पास्ट के बारे में बार बार हम सोचते रहते हैं। तो पास्ट के बारे में सोचने से कुछ फायदा है, फायदा है कुछ पास्ट के बारे में सोचने से? हाँ, अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो हाँ, समझ करके मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी गलती हो गई है, और रियलाइज हो जाने के बाद मैं अपने आप से दृढ़ संकल्प कर लूं कि मुझे वो मिस्टेक वो गलती मुझे रिपीट नहीं करना है। इंसान है, गलतियां तो कर लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वो है जो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करता। हम सभी को बुद्धिमान इंसान बनना है ना, बुद्धिमान इंसान बनना है तो फिर अपनी गलतियों को रिपीट बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि गलतियों से बहुत कुछ हम सीख लेते हैं। जो वो लेसन लेकर के, उस गलती से क्या लेसन लिया, वो लेसन लेकर के हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर बार बार ये सोचू कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा इसके बजाय ऐसा कर लेती तो अच्छा था, वो उसके बजाय ये कह लेती तो अच्छा था। तो बार बार पास्ट के बारे में सोचने से कुछ भी फायदा नहीं है। कई बार हम खुद के बारे में नहीं सोचते, अगले व्यक्ति के बारे में सोचते, देखा उसने ऐसा कर लिया, देखा उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, तो ये सारी बातें दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। और जितना ज्यादा निकट संबंध है ना, उतने ज्यादा बड़ा धक्का लगता है। जितना नजदीक का रिश्ता है और वो व्यक्ति चीट कर लिया, धोखा दे दी, तो बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। तो फिर उस व्यक्ति को कभी नहीं माफ कर सकते। अगर माफ नहीं किया तो किसका नुकसान है, किसका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अपना ही नुकसान हुआ। क्यों क्यों अपना नुकसान हुआ उसको क्षमा न करने से? क्योंकि अगर पैर पैदल कर रहे होते हैं ना, तो पीछे वाला पैर उठा करके आगे रखते हैं, राइट। तो अगर पीछे वाला पैर कहीं अटका हुआ है, कितना भी ताकत लगाएं आप आगे बढ़ पाएंगे? हाँ नहीं, इसको फ्री करना पड़ेगा पीछे वाला पैर। तो तब जाकर के हम कम एनर्जी में, कम ताकत में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बुद्धि बार बार पीछे जा रहा है, इसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखा इतना बड़ा धोखा दे दी, बार बार बुद्धि बाहर पीछे जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। माना मैं कितना भी ताकत लगाऊं ना, मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बुद्धि को पास्ट से काटना पड़ेगा, उसको फ्री करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा बुद्धि रूपी पांव को। तो बुद्धि रूपी पांव को पास्ट से कैसे हम निकालेंगे, पास्ट से कैसे निकालेंगे? हर चीज जो पास्ट में हुआ उसको मिटा दें, ऐसे मिट सकता है? नहीं मिटता। वो इतना इजी नहीं है कि बोर्ड पे डस्टर निकाल लेकर के डस्ट कर ले या रब कर ले वो निकल जाए, मिट जाएगा? नहीं मिटता, तो इतना इजी नहीं है। कुछ तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं पास्ट की बातों को भूल पाऊं। उसके लिए क्षमा करने की शक्ति, इसलिए इंग्लिश में कहावत है फॉरगिव एंड ओनली देन यू कैन फॉरगेट। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, ये दोनों शब्द है ना, साथ साथ जाता है। अगर मुझे पास्ट को भूलना है, मुझे क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा नहीं करेंगे तो बार बार बुद्धि वहीं जाता रहेगा। लेकिन क्षमा करना इतना इजी है, इजी है इतना सहज है क्षमा करना? ठीक है, आपको क्षमा कर दिया, जाओ, ऐसे कहने से क्षमा हो जाएगा? भले मैं हमने बोल दिया क्षमा कर दिया जाओ, आप फिर भी बुद्धि में चलता रहेगा, फिर भी चलता रहे। तो इसीलिए क्या करना, भले हम कहते हैं कि क्षमा कर लिया, क्षमा करती हूं मैं आपको, लेकिन बुद्धि से, मन से हमें क्या करना है, दुआएं देनी है उन लोगों को, आशीर्वाद देने। जैसे कि हम जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, या निकट लोग हैं, उनको हम दुआएं देते हैं ना, फूलो फलो आगे बढ़ो, ऐसे दुआएं निकलती हैं, ऐसे शुभ संकल्प शुभ विचार चलता है, आशीर्वाद हम देते चलते हैं। ऐसे ही क्या इन लोगों को भी हम दुआएं दे पाएंगे? ऊपर से तो बोल दिया क्षमा कर लिया, लेकिन अंदर से बद्दुआएं निकल रही है, सब कुछ खो जाए, ये हो जाए, बीमार पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बर्बाद हो जाए। ऊपर से बोल रही हूं कि क्षमा कर दिया, अंदर से बद्दुआएं निकल रही है, ये क्षमा करना नहीं हुआ। अंदर से भी दुआएं दें, भले हम इतने लेवल तक दुआएं न दें, एटलीस्ट ये तो कह सकते, चलो कोई बात नहीं, सुखी रहो जीवन में, ये तो कह सकते हैं। अंदर से वो निकले दुआएं, तब जाकर के हम उनको क्षमा कर सकते हैं, है ना? तो पास्ट को भूलने के लिए हमें क्षमा करने की शक्ति को धारण करना होगा। और क्षमा तभी हम कर सकते हैं जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझते हैं। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है ना, बिना कारण से कोई भी नहीं घटता है, बिना कारण से। अगर कोई आकर के मुझे दुख दे रहा है, आकर के कोई मुझे पत्थर फेंक रहा है मेरे ऊपर, या कोई भी कुछ भी कर रहा है बिना कारण, मैं चल रही हूं आकर के किसी ने ठोक दिया, अरे मेरी क्या गलती थी, वो किसी को स्कूटर वाले आकर के ठोक दिया, और उसको मैं फिर उस पर गुस्सा कर रही हूं उसको, और फिर साइकिल शुरू हो जाता है कर्मों में। कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब था मेरा और उस व्यक्ति का, इसके कारण से वो आकर के मुझे ठोका। तो वो समझने की जरूरत है, हर जो घटना घटती है मेरे जीवन में, भले इस जन्म में मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने कोई दुख नहीं दिया है उस व्यक्ति को इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं दिया होगा ना। तो बिना कारण कुछ नहीं होता, इसीलिए अगर वो दुख मिल रहा है उस व्यक्ति से, मुझे ये समझ लेना होगा मेरा लोन क्लियर हो रहा है, मेरा लोन क्लियर हो रहा है। अगर जितना जितना लोन क्लियर होता जाता है, इतना खुशी होनी चाहिए, दुखी होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए ना, खुश हो जाते हैं कि चलो इतना तो कर्ज मेरा चुप तो हो गया, इतना तो हल्के हो गए, इतना तो लाइट हो गया, तो ये समझते हुए चलते हैं तो फिर वो नेगेटिव साइकिल फिर से शुरू नहीं करते, फिर से शुरू नहीं करते। अगर उसने दुख दिया, उसने एक कोई अपशब्द का प्रयोग मेरे ऊपर किया तो मैं दो करूं, वो फिर चार करता है, फिर मैं आठ करूं, तो फिर ये नेगेटिव साइकिल पकड़ और भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये नेगेटिव साइकिल कहां रुकेगा, कहां रुकेगा? जब मैं, मेरे अंदर पावरफुल ब्रेक जब है तब रुकेगा ये ब्रेक। जितना ज्यादा कड़ा हिसाब किताब है ना, उतना जबरदस्त मेरे पास ब्रेक होने की जरूरत है। वहां मैं फुल स्टॉप लगा करके, भले वो कितना भी नेगेटिव दे रहा है, कितना भी दुख दे रहा है, मैं वहां ब्रेक लगा करके मैं रिटर्न में क्या मैं सुख दे पा रही हूं उसको निरंतर। कई बार हम सोच लेते हैं कि चलो मैं उसको दुआएं दो या सुख दो, सुबह मैंने अच्छा फीलिंग्स दिया, अच्छा सोचा उस व्यक्ति के बारे में, फिर दोपहर को बदल गई, फिर से मेरा नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया उसके साथ, फिर रात को बढ़ गया, फिर मैं सुबह मेडिटेशन में बैठकर फिर अपने आप को बदला, फिर दोपहर तक वो ठीक रहा, फिर दोपहर को फिर कम हो गया, तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा ना, वो हिसाब किताब चुकतु नहीं होगा। तो इसलिए निरंतर पॉजिटिव, उस व्यक्ति के प्रति निरंतर पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो साइकिल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में, दो दिन में, एक पंद्रह दिन में नहीं होता। लगातार जब मैं उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव सोचती जाऊं, दुआएं देती जाऊं, श्रेष्ठ विचार करती जाऊं उस व्यक्ति के प्रति, तब जाकर के ये हिसाब किताब चुक्त होगा। ये पास्ट के बारे में, और फ्यूचर के बारे में भी हम बहुत कुछ नेगेटिव वेस्ट सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में, कल क्या होगा, मेरी बेटी अभी 5 साल की है तो 20 साल की होगी तो क्या होगा, शादी कैसे होगा, अभी बच्चा अभी 2 साल का है कि उसके एडमिशन, स्कूल के एडमिशन क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत आगे की चिंता हम लेकर के बैठते हैं, भविष्य की चिंता, मैं रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये अगर हो गया तो क्या होगा, मैं बीमारी आ गई तो क्या होगा, चोरी हो गई तो क्या होगा, तो बिना कारण भविष्य की चिंता। क्या चिंता करने से सब कुछ हल मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, तो क्या करना होगा? भविष्य की चिंता छोड़ दे फिर, कल क्या होगा, भविष्य की चिंता छोड़ दे। हर एक को चिंता है कि नहीं? हर एक को चिंता है भविष्य की, कल क्या होगा। इसके लिए हम मेहनत करते हैं, आज कल अच्छा हो इसलिए आज हम मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार हम भविष्य के बारे में भय के कारण से बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं। अगर एक मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पर जा रहे हैं और हर रोज जब लॉक लगा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही प्रकार के सोच रहे हैं, कहीं मेरे हमारे घर चोरी ना हो जाए, तो इसलिए अच्छी रीति बंद करके, दो दो चार चार लॉक लगा करके, हर खिड़की बंद करके, ये संकल्प से कहीं मेरे हमारे घर में चोरी ना हो जाए, तो क्या होगा 15-20 दिन के बाद क्या होगा, आपको पता है? आपको पता है 15-20 दिन या एक मास के बाद क्या होगा? हर रोज लगातार ये लोग दोनों ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी। तीनों ने तो नेगेटिव नहीं सोचा था, तीनों ये सोचा था कि कहीं हमारे घर चोरी ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख करके, हर खिड़की दरवाजा बंद करके, दो दो चार चार लॉक लगा करके वो लोग निकल रहे थे। तो भी चोरी क्यों हुई? तो भी चोरी क्यों हुई? इसीलिए लॉक लगाए हैं, ज्यादा सामान है इसीलिए लॉक लगाए हैं। इन्होंने तो नेगेटिव सोचा है क्या? इन्होंने तो यही सोचा था कहीं हमारे घर चोरी ना हो जाए, हो जाता, चोरी ना हो ऐसा सोचा था ना, चोरी हो ऐसा तो नहीं सोचा था चोरी ना हो ऐसा सोचा था, कोई भी नहीं सोचता कि हमारे घर चोरी हो जाए, कोई नहीं सोचता। क्या आपका घर खुला रखते हैं आप? एक लगाते हैं, है ना? तो एक्चुअली क्या होता है पता है, मन किस रीति से काम करता है, मैं आपको टेस्ट बताती हूँ। अगर आपको ये कहे अगले 30 सेकंड में, अगले 30 सेकंड में कोई भी बंदर को याद नहीं करना, क्या हुआ? केवल एक मिनट के लिए नहीं, केवल 30 सेकंड के लिए मैंने कहा, केवल अगले 30 सेकंड के लिए बंदर को याद नहीं करना। तो क्या याद आया अभी? बंदर याद आया। मैंने क्या कहा था? बंदर को याद नहीं करना बोला था, तो भी आपने याद क्यों किया? मैंने याद न करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया तो भी आपने याद क्यों किया? क्योंकि बंदर शब्द सुनते ही उसके रिलेटेड जो ये है ना पिक्चर है ना, तो वो आ जाता है, वो आ जाता है ऐसे ही। और फिर पिक्चर आ गया, फिर मैं कहूं नहीं आए, तो आने के बाद फिर ना बोलूं, जो घर में व्यक्ति आ गया तो उसको बोलो फिर नहीं आओ, तो आ तो गए ना एक बार, तो फिर मैं बोलूं कि जाओ, नहीं जा सकता है ऐसे ही। चोरी के बारे में सोच लिया, फिर चोरी, फिर सोचने के बाद फिर कहे कि चोरी ना हो, हो सकता है? मन की एनर्जी ऑलरेडी चोर को चला गया, तो उसको अट्रैक्ट किया कि उसको और संकल्प भेजा, टेलीपैथी वो शक्ति भेजी मन से कि आओ भाई आकर के हमारे घर चोरी कर लो, तो फिर कहे ना हो ही नहीं सकता, है ना? इसलिए चोरी के बजाय क्या सोचना है, चोरी के बजाय क्या सोचना है? सुरक्षा के बारे में सोचना है कि हमारा घर हमेशा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं। क्या नहीं होना है वो नहीं सोचना है, क्या होना है उसके बारे में सोचना है। अगर मैं बार बार सोचू कहीं मुझे कैंसर ना आ जाए, कैंसर ना आ जाए, कैंसर से बहुत डर लगता है, कैंसर ना आ जाए तो क्या होगा? कुछ साल के बाद कैंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि कैंसर की बीमारी को मैंने अपनी मन की शक्ति को बार बार भेजा तो वो आ ही जाता है। इसलिए बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, उसके बजाय क्या सोचना है? स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं, मरते दम तक स्वस्थ रहूंगी, हेल्थ के बारे में सोचना है, बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन अक्सर भविष्य को लेकर के हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? कहीं ऐसा, क्योंकि हर रोज न्यूज में देख रहे हैं कि ये हो गया, वो खांड हो गया, ये ऐसा हो गया, समाज में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसको देख देख करके मन में क्या हो जाता है, डर लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। समाज की परिस्थितियों को देख करके डर लगने लगता है, वो डर के कारण से फिर क्या सोचते, कहीं ऐसा ऐसा जो ऐसी परिस्थिति मेरे साथ भी ना हो, सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच करके फिर वो ऐसी घटनाओं को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। भले समाज में हो रहा है लेकिन मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, भले लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने साथ, अपने साथ क्यों नहीं हो सकता? अनहोनी, अनहोनी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा साथी जो है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो परमात्मा है। जब हमारे साथी इतने शक्तिशाली है तो डरना क्यों है? कि रात के 12 बजे अंधेरी रात में, अंधेरी सड़क पर आपको जाने के लिए कहे, जाएंगे 12, 1 बजे, 2 बजे, सुनसान है वहां, कोई लोग नहीं है, कोई आना जाने जाने वाले नहीं है। वहां जाएंगे अकेले जाना है, कोई साथ नहीं ले जाना है। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। जो जाने के लिए तैयार है तो आज रात को भेजेंगे आपको। अक्सर लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। क्यों नहीं जाना पसंद करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि खामखा क्यों जाना है, एक बात तो। दूसरी बात, कहीं चोर ना या कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मर्ड लूटपाट ना हो, ये हो जाए, तो क्यों जाना है, ये सोचते हैं। अगर आपको कहे चलो आप नहीं जाएंगे, लेकिन आपके साथ एक पहलवान को भेजेंगे, एकदम हटा कटा है, जूडो कराटे सब कुछ आता है, उसके पास मशीन गन है, लेटेस्ट वेपन्स है उसके पास, उसके साथ जाने के लिए तैयार है? जाने के लिए तैयार है, हाँ या ना? हाँ। जो हाँ कह रहे हैं उनको अगर कहे, वो जो पहलवान है ना, वो टेररिस्ट है। जाएंगे उनके साथ? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डर है कहीं वो ही मेरे को मार ना दे, है ना? तो इसलिए ऐसे ही भगवान के बारे में जो सोचते हैं ना हम, ये सर्वशक्तिमान है। सभी सोचते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, कोई सोचते हैं कि भगवान कमजोर है? कोई नहीं सोचता कि भगवान कमजोर, सभी ये मानते हैं कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उनकी मदद लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? उनसे मदद लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। उस पहलवान से भी मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डाउट आ गया है कि वो शायद टेररिस्ट तो नहीं है, इसने बोला तो वो टेररिस्ट है, तो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं वो तो मार नहीं डालेगा। तो इसीलिए उस कहीं विश्वास की कमी, भले वो शक्तिशाली है लेकिन उससे मैं मदद क्यों नहीं ले रही हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ गया है, विश्वास की कमी हो गई है। ऐसे ही हम परमात्मा से क्यों नहीं मदद ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, मान लिया, लेकिन क्या मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को मदद करेंगे वो? मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, बहुत पाप कर लिया है, फिर भी मुझे वो मदद करेंगे? ये डाउट, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसीलिए हम उस परमात्मा से मदद नहीं ले पाते हैं। ये डाउट जो है निकालना पड़ेगा और पूरा अटूट विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ वो मेरा पिता है और वो बैठा ही है मुझे मदद करने के लिए। कोई सोचते क्या वो फ्री बैठा है क्या कि आपको मदद करे हर बात? वो फ्री बैठा हुआ ना, मेरे साथ कारण से ही वो फ्री बैठा हुआ। ये विश्वास होना चाहिए, वो इज्जत होना चाहिए, वो अथॉरिटी होना चाहिए कि हाँ परमात्मा मेरा है और मैं उसकी हूं। ये जब है, अथॉरिटी है, तब वो मदद जरूर मिलेगा। अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको अथॉरिटी से बोल सकते हैं ना कि ये काम कर लो थोड़ा। नहीं भाई, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर लेना। क्यों अथॉरिटी है? कर लेना ही पड़ेगा। हम वो फोर्स क्यों भर रहे? क्योंकि मुझे पता है कि वो करेगा, क्योंकि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, अथॉरिटी है ना। ऐसे ही परमात्मा के ऊपर भी वो अथॉरिटी, ये क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज संबंध जहां है वहां हो सकता है। इसलिए भविष्य की चिंता हम कैसे निकाले? पास्ट की चिंता निकालना है क्षमा करने से, भविष्य की चिंता निकालना है विश्वास। परमात्मा में विश्वास रख करके हमेशा भविष्य के बारे में पॉजिटिव सोचें। ये दोनों जब एक्स्ट्रा लगेज निकल जाता है ना, तो वो हमारे पास बहुत ही कम लगेज होगा, कम बर्डन होगा, तब हमारे हम अपनी जीवन रूपी यात्रा जो है बहुत सुखदायी बना सकते हैं, बहुत सुखदायी बना सकते हैं। इसलिए वो एक्स्ट्रा लगेज पास्ट और फ्यूचर का निकालने की जरूरत है जीवन रूपी यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और नेक्स्ट शक्ति है सहन करने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक बच्चा आम के पेड़ को पत्थर फेंक रहा है और पेड़ आम ही देता है, पत्थर नहीं देता, पत्थर कहीं और जाकर के गिर जाता है लेकिन आम ही देता है। माना सहन करना, माना सहन करना, माना अपकारियों पर उपकार करना। वो गाली दे मैं गले लगाऊं, वो पत्थर फेंके मैं फूल दूं, तो क्या अपकारियों पर मैं उपकार कर सकती हूं? आज का जमाना वो नहीं रहा, अगर वो गाली दे एक दे तो वो मैं चार दे दो, पहले से चार दे दूं तो ताकि वो दे ही नहीं। तो ये जमाना है, लेकिन दूसरी तरफ हम मान रहे हैं सहन करना एक शक्ति है। कोई ये नहीं कहता सहन करना कमजोरी है, सहन करना तो एक शक्ति है, लेकिन हम अपने जीवन में वो सहन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत फहमी या फिर हम कहीं इल्यूजन, भ्रांति है कि जो थमेगा ना वो मरेगा, जो झुकेगा वो मरेगा। तो इसलिए पहले से ही दबदबा बना के रखो तो ताकि वो मेरे को कुछ कहे ही नहीं। तो क्या ऐसे करने से सब परिस्थितियां ठीक रहे चलेगी, सब संबंध ठीक चलता है? पहले से दबदबा बना के रखते हैं, सहन बिल्कुल नहीं करते, वो एक बोलने से पहले मैं चार सुना दूं, तो ये चलता रहेगा तो जिंदगी स्मूथ चलेगा? नहीं। दूसरा व्यक्ति अगर सहन करता है ना तो हम कहते ये तो देवता है, कुछ नहीं बोलता, इतना चुप रहता है, इतना सहन करता है, इतना अत्याचार चल रहा है, इतना ये हो रहा है फिर भी वो सहन कर रही है या कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति अगर सहन करता है तो उसको हम पूजते हैं, उसको कहते हैं, वो उसकी महिमा करते हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भ्रांति है ना। तो वो भ्रांति को निकालना पड़ेगा, जो महान है वही सहन कर सकता है, जो कमजोर है ना वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, क्योंकि सहन करने के लिए अंदर से ताकत की जरूरत है। अगर वो बहुत कुछ सुना रहा है, क्या मैं उस समय ब्रेक लगा करके चुप रह सकती हूँ? मेरे अंदर का जो ब्रेक है ना पावरफुल है तभी मैं चुप रह सकती हूँ, नहीं तो फिर ये मोटर जो है वो बोलना शुरू करेगा। तो जो महान है, जो शक्तिशाली है वही सहन कर सकता है, और जो सहन करते करते आत्मा के अंदर फिर से वो बल, वो शक्ति बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कई बार सहन भी कर लेते हैं, लेकिन सहन करते करते फिर ये लगता है कि क्या मुझे ही सहन करना है, कह के कब तक सहन करती रहूं? सामने वाला व्यक्ति भी समझे ना, ये बात आती है। दो चार बार, दस बार, कुछ साल तक हमने सहन कर लिया, फिर बाद में ये बोल निकलता है, क्या मुझे ही सहन करना है? तो क्या ये सहन करना हुआ या सप्रेस करना हुआ? सहन करना हुआ या सप्रेस करना हुआ, क्या कहेंगे? क्योंकि सहन करना माना सहनशीलता, पूरा शब्द क्या है उसका, सहनशीलता। सहनशीलता माना बाहर से भी चुप और अंदर से भी शीतलता। शीतलता, सहनशीलता माना बाहर से भी चुप और अंदर से भी शीतल। अंदर से भी वो स्टीम या आग ना निकले या नेगेटिव थॉट्स ना निकले। बाहर से कोई ना कोई कारण से बाहर से चुप हो जाता, बॉस है वो डांट लगा रहे हैं तो मैं बाहर से तो चुप हूं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आपको क्या समझ के रखा है, ये है वो है, वो सारा गुस्सा चल रहा है अंदर, वो आग चल रहा है लेकिन बाहर से चुप है, तो क्या होगा? क्योंकि अगर वो बाहर आया, वो आग बाहर निकाला तो नौकरी का सवाल है, नौकरी छूट जाएगी। तो इस कोई ना कोई दबाव के कारण से हम कर चुप रह जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ बहुत कुछ चलता है। उसको सहनशीलता नहीं कहेंगे, उसको सप्रेशन कहते हैं, उसको दबाना कहते हैं। बस सहनशीलता माना अंदर से भी शीतल। और अगर हम केवल सप्रेस करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर कुकर बन जाते हैं। प्रेशर कुकर क्या करता है, अगर ऊपर का जो सेफ्टी वाल्व है ना, अगर वो ब्लॉक है, बंद हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो क्या होगा, फट जाएगा, है ना, बर्स्ट हो जाएगा। ऐसे बाहर से तो मैं बंद हूं, बाहर से तो मैं चुप हूं, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दो चार बार मैंने सहन कर लिया, दो चार बार, पांच बार, दस बार मैं चुप रह गई, तो ग्यारहवीं बार क्या होगा, ग्यारहवीं बार क्या होगा, पहले से ज्यादा जो अंदर का जो प्रेशर है ना, वो पूरा बाहर आ जाएगा। इतना हंगामा खड़ा कर देंगे छोटी बात पर, इतना डांट ली, इतना चिल्लाएंगे, इतना सीन क्रिएट कर देते हैं कि वो सीन जो क्रिएट कर रहे हैं, वो जो हम ये कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर परिस्थिति के कारण से नहीं, लेकिन जो दबा हुआ है ना अंदर, दबा हुआ था इतने महीनों से, वो सब कुछ बाहर आ जाता है ना। तो वो फिर और ही नुकसान हो गया, और ही नुकसान हो गया। इसलिए क्या करना है, वो प्रेशर अंदर क्रिएट होने ही नहीं देना है। प्रेशर ही नहीं है तो बाहर भी नहीं आएगा ना, वो अंदर नेगेटिविटी की आग जो है वो नहीं करना। तो वो नेगेटिविटी की आग ना आए अंदर, वो शीतल रहे, उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, शीतल रहे अंदर, क्या करें उसके लिए। अब मान लीजिए कोई डांट लगा, बिना कारण, मेरी मिस्टेक ही नहीं है, मेरी गलती ही नहीं है, वो डांट लगा रहे हैं। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ मेरी गलती नहीं है, तो भी वो समझ नहीं रहा है, तो उस टाइम पे तो वो एकदम गर्म है, तो उस टाइम पे मैं भी चिल्लाऊं तो वो और ही परिस्थिति गर्म हो सकता है। उस टाइम पे मुझे चुप रहना होगा, चुप रहने के लिए भी ताकत चाहिए। वो चुप कैसे, किस आधार से रहूं, कार्मिक अकाउंट। उस टाइम पे सामने वाले व्यक्ति के प्रति दया भाव लाना बहुत जरूरी है, दया भाव लाना जरूरी है। क्योंकि जैसे चलते हैं, चल रहे हैं, या कोई उसको कोई पैर कुछ खराब हो गया है, वो कहीं गिर गया है, तो चल रहा है, तो उसके प्रति तरस आता है ना, दया आती है ना, बेचारा तो ऑलरेडी गिर गया है, तो उसको फिर बोले कि वो चलना है, तो दया आता है। तो ऐसे ही को ऑलरेडी वो आत्मा कमजोर है, गुस्सा कर रहा है जो व्यक्ति, जो इतना क्रोधित हो रहा है, उसके ऊपर मैं और क्रोधित हो जाऊं और गुस्सा करूं, वो आग को, और आग को जैसे तेल डाला, घी डालना हो जाता है। इसीलिए वहां शीतल पानी डालना जरूरी है। शीतल पानी डालने के लिए मुझे ये सोचना जरूरी है, वो आत्मा भी परवश है बेचारी। आत्मा, वो व्यक्ति जो है ओरिजिनली अच्छा है, लेकिन वो परवश होने के कारण से वो गुस्से में है। पॉजिटिव भी सोचा, वो व्यक्ति तो ओरिजिनली अच्छा है, पॉजिटिव सोचा, लेकिन फिर ये सोचा दया कि वो आत्मा, वो व्यक्ति अभी परवश है, रहने दो, एक दो घंटे के बाद बैठ करके समझा दूंगी उसको। तो अपने आप को अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रीति से समझाना पड़ेगा, तब जाकर के मन शांत रह सकता है, तब हम सहन कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रेशर कुकर की तरह हम एक्सप्लोड हो जाते हैं, है ना। सहनशीलता ये है, अपकारियों पर उपकार हम तब कर सकते हैं। दया भाव रखना जरूरी है दूसरों के ऊपर। और नेक्स्ट शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, बहुत सारी नदियां आकर के सागर में मिल रही हैं, नदियों की पानी, और नदी के पानी के साथ साथ शहर का सारा किचड़ा भी सागर में आ जाता है। और सागर क्या करता है, सागर क्या करता है, वो किचड़ा वाला पानी जो है ना, गंदा पानी, वो ले लेता है पहले, फिर क्या करता है, किचड़े को फिर बाहर फेंक देता है। और इसीलिए सागर के तले में पानी बहुत शुद्ध है। सागर अंदर जब जाते हैं तो वहां भी बहुत शुद्ध है, केवल किनारे पर थोड़ा गंदा है क्योंकि गंदगी को वो सागर बाहर फेंक रहा होता है। ऐसे ही मुझे संसार में रहते हुए, संसार रूपी सागर में रहते हुए हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना है तो सागर का जो गुण है ना, सागर का गुण क्या है कि अच्छाई को ले लेना और बुराई को फेंक देना। तो ये गुण हमारे अंदर धारण करना होगा। हर व्यक्ति के अंदर गुण भी है अवगुण भी है, अपने अंदर भी है, राइट। हर एक महसूस करते हैं कि अपने अंदर, हर एक के अंदर गुण भी है तो अवगुण भी है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हम कहें एकदम परफेक्ट है, 16 कला संपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं है। कोई है, कोई है ऐसे? कोई भी नहीं है। 1%, 2%, 3% कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां रह जाती है। और इस संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे उसके अंदर है ना कुछ भी गुण नहीं है, एकदम जीरो है, पूरा अवगुण से भरा हुआ है वो व्यक्ति। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। हम सभी क्या है, बीच में है, परसेंटेज वाले हैं। कोई 30-60-70% है, 40-60% है, 50-50% है। हर एक के अंदर कुछ परसेंटेज में गुण है और कुछ परसेंटेज में अवगुण है। जब अपने अंदर परसेंटेज है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं सामने वाले व्यक्ति के अंदर 100% गुण होना चाहिए? ये एक्सपेक्ट करना ही रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं तो सामने वाला परफेक्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए उसके गुण और अवगुण को समझते हुए, उस हर व्यक्ति के गुण और अवगुण को समझते हुए हमें उस व्यक्ति को अपना लेना चाहिए। हाँ, इसके अंदर ये अवगुण है उसको रिजेक्ट करो, इसके अंदर ये है उसको रिजेक्ट करो, ये रिजेक्ट करो, नहीं। तो ऐसे हर व्यक्ति को हम रिजेक्ट करते रहेंगे तो किसके साथ संबंध जोड़ेंगे? अगर फ्रेंडशिप निभाना है किसी के साथ भी, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है, तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है तो समाज में रहेंगे कैसे, है ना? तो फ्रेंड्स भी चाहिए, लोग भी चाहिए हमारे साथ मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए, कार्य व्यवहार में आने के लिए। लोगों के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हर एक के अवगुण को मैं देख करके रिजेक्ट करती जाऊं तो किसके साथ भी मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। तो इसीलिए उन दोनों को समझते हुए, गुण और अवगुण को समझते हुए उस व्यक्ति को मैंने अपना लिया, फिर क्या हुआ, बुद्धि से मैंने उसके अवगुण को देखना बंद कर दी, इग्नोर करना शुरू किया। हाँ, अगर इतने टर्म्स मेरे अच्छे हैं उस व्यक्ति के साथ, मैं बोल सकती हूँ कि देखो ये जो आपने किया है ना वो ठीक नहीं है, इसको थोड़ा बदलो आप। अगर मैं बोल सकती हूँ, मेरा संबंध उस व्यक्ति के साथ इतना अच्छा है मैं बोल सकती हूँ, तो बोल लेना चाहिए। अगर नहीं बोल सकती हूँ तो किनारा कर लेना चाहिए। और कई बार ये होता है कि मैं इतने बार बोला उसको ये तुम्हारी गलती है, प्लीज इसको चेंज करो, प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया, ये भी किया, वो भी, तो भी वो बदलता नहीं है, क्या करें? छोड़ दें, उस व्यक्ति को ही छोड़ दें। व्यक्ति को तो नहीं छोड़ सकता। मान लीजिए आप नए बच्चे हैं तो उसकी गलती पता है क्या, नहीं देरी से क्यों उठते हो, मतलब कोई भी एक दो बात ऐसी गलतियां हैं उसको, मुझे पता है कि बार बार समझा रहे हैं कि ये नहीं करो बेटा, ये नहीं करो बेटा, डांट के भी समझाया, प्यार से भी समझाया, तो भी वो बदलता नहीं है, तो करे क्या? उस बच्चे को तो बाहर नहीं फेंक सकते, घर में तो रखेंगे, बेटा तो या बच्चा तो बच्चा है ही, तो क्या करे उस टाइम पे? परेशान होते रहेंगे माताएं यूजली, देखो मैं अपने बच्चे को इतना समझाई तो भी वो बदलता नहीं है, तो करें क्या? परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मन से सेवा करो, मन से, क्योंकि वो व्यक्ति क्यों बदल नहीं रहा है, उस मन के अंदर शक्ति नहीं है, वो आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, वो कमजोर है, तो इसीलिए वो बदल नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारा दायित्व क्या होता है, परमात्मा से वो शक्ति लेकर के उस आत्मा को शक्ति का दान दे। इसको हम कहते हैं मनसा सेवा। कई बार हम बोल से जो कार्य नहीं कर पाते हैं, मन की शक्ति से हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव बना करके, परमात्मा के साथ जोड़ करके, उस आत्मा को, वो बच्चे के रूप में इमर्ज नहीं कर रहा, वो भी एक आत्मा है, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए उस आत्मा के अंदर शक्ति मिले। शक्ति जैसे आत्मा के अंदर मिलती जाएगी, भरपूर होता जाएगा, तो फिर वो परिवर्तन आ जाएगा, है ना। मन से काम लेना सीखना होगा कई बार। तो इसीलिए एडजस्ट होकर, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलने के लिए उसके गुणों को देखना है, अवगुणों को इग्नोर करना है, गुण रूपी मोती को चुगते जाना है। तो हर व्यक्ति के साथ हम एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। और नेक्स्ट शक्ति है परखने की शक्ति। यहाँ एक जौहरी सोने को परख रहा है, और सोने को कैसे परखते हैं, कसौटी पर, एक पत्थर होता है, पत्थर पर सोने को घिसते हैं, फिर वो पता चलता है कि कितना कैरेट का गोल्ड है वो, है ना। तो ऐसे ही हमें, ठीक है, ये एडजस्ट होकर के चलना है, सहन करना है, ये सब हम कहते हैं ये सॉफ्ट स्किल्स है, ये भी गुण है, लेकिन परखना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बार अगर उस व्यक्ति से मैंने धोखा खा ली, वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने विश्वास किया था उस व्यक्ति पर, मैंने धोखा खा ली, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार उसी व्यक्ति से मैं धोखा खाऊं, तो किसकी गलती है, अपनी ही गलती है। और तीसरी बार उसी व्यक्ति से फिर से तीसरी बार मैं धोखा खाऊं, फिर उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मेरी मूर्खता है ना। क्योंकि जब पता है वो व्यक्ति ऐसा है, बार बार उस पर विश्वास कर रही हूं, बार बार मैं धोखा खा रही हूं, तो फिर जैसे पृथ्वीराज चौहान ने महात्मा गजनवी के ऊपर विश्वास करते, हर बार किया, हर बार वो लुट के गया, हर बार ये किया। तो कई बार अपने जीवन में परखने की शक्ति की जरूरत है। तो वो परखने के लिए क्या कसौटी क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन में कसौटी क्या है, इस आधार से हम दो चीजों को परखते हैं जीवन में, एक है परिस्थिति, एक है व्यक्ति। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, वो समझ चाहिए, परखने की जरूरत है। और ये व्यक्ति किस लेवल का है, उसके साथ हम किस लेवल के संबंध हम जोड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को भी हमें परखने की जरूरत है। तो ये दो चीजों को हम परखना है हमें। तो उसके लिए कसौटी क्या है हमारे लिए, कसौटी क्या है, उस आधार से हम व्यक्ति को परिस्थिति को परखें। क्या कहेंगे, उसके हाव भाव, नेवर जज अ बुक विद द कवर कहते हैं। कवर बहुत सुंदर है आजकल, है ना, रैपर और कवर बहुत सुंदर होता है, अंदर का माल खोखला का खोखला रह जाता है, है ना। तो उसके व्यक्ति के हाव भाव से हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग ठग बहुत होते हैं, जो हवा बहुत पॉलिश्ड होता है उनके, और अंदर उनकी इंटेंशन क्या है पता नहीं चलता है। तो क्या फर्क है, क्या है वो कसौटी, विचार और गुण, काम को देख के। वो तो व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अपने अंदर कुछ शक्ति की जरूरत है, जिस आधार से मैं देखती हूँ उस व्यक्ति को, परिस्थिति को मना परख सकती हूँ, रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। अपने अंदर कुछ चाहिए, बाबा से शक्ति। कौन सी शक्ति? वो है विजडम। विजडम बुद्धि के अंदर, बुद्धि की शक्ति तो होता है लेकिन बुद्धि के अंदर क्या है, विजडम की जरूरत होता है। विजडम माना प्रज्ञा, वो भी आध्यात्मिक प्रज्ञा, स्पिरिचुअल विजडम अगर अंदर है तो फिर उस आधार से हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। इसीलिए कहते हैं ना, घरों में ना बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। कहते क्यों? बुजुर्गों के पास क्या चीज है जो यंगस्टर्स के पास नहीं है? अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव। भले यंगस्टर्स जो है वो एनर्जेटिक है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज नहीं है जो बुजुर्गों के पास है, वो है अनुभव, है ना। वो अनुभव प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग है तो वो अनुभवी है और यंगस्टर है वो अनुभवी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता कि यंगस्टर, अगर हम यंग है छोटे हैं लेकिन अनुभव को हम बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं 60 साल के बाद ही मैं अनुभवी हो जाऊं, 20 साल के हैं तो भी अनुभवी हो सकते हैं। कैसे अनुभवी हो सकते हैं? कैसे अनुभवी हो सकते हैं? हमारे आंख और कान को खोल के रखना पड़ता है और हर चीज को, हर परिस्थिति को हमें देख करके समझ लेने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, वो गिर रहा है, ये मुझे जरूरी नहीं कि उसको फॉलो करूं। वो गिर करके वो कितना दर्द उसको महसूस, उससे समझ लेना चाहिए कि मुझे वहां उस रास्ते से नहीं चलना है। देख देख करके ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसलिए वो तीन लेवल है, एक है इन्फॉर्मेशन, दूसरा लेवल है ज्ञान या नॉलेज, और तीसरे लेवल में है विजडम या प्रज्ञा। इन्फॉर्मेशन या सूचना, ये जो टीवी और न्यूज़पेपर से जो मिलते हैं इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन फिर ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिला, गुस्सा नहीं करना चाहिए, केवल इन्फॉर्मेशन है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक लाइन का इन्फॉर्मेशन है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह इन्फॉर्मेशन ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा? ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा? प्रैक्टिकली पहले समझ चाहिए। इन्फॉर्मेशन प्लस समझ इज इक्वल टू ज्ञान। समझ क्या है? गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हानि क्या होगा, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता, ये सब प्रकार का ज्ञान, समझ। समझ जब मिल जाता, सेटिस्फेक्शन मिल गया ना। ये तो बड़े कहते हैं कि पापा कहते हैं गुस्सा नहीं करो, नहीं करो, गुस्सा क्यों नहीं करना है, तो इसका सारा उत्तर जब मिल जाता है ना तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ठीक है इस कारण से गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हो गया, समझ हो गई। ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं, मुझे समझ है कि गुस्सा क्यों नहीं करना है, है ना। तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं होता, समझ के आधार से चलते हैं ना, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन के आधार से चलते हैं फिर ब्लाइंड फेथ हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्यों नहीं करना है, क्यों करना है, या अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज, वो ज्ञान हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग जब है, समझ जब है, वो ज्ञान हो जाता है। फिर ज्ञान फिर प्रज्ञा में कैसे परिवर्तन होगा? समझ गई गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से क्या हानि होगा, गुस्सा कंट्रोल कैसे किया जाता है, सब कुछ मैं समझ गई, केवल समझ है लेकिन फिर भी वो समझ, ज्ञान प्लस इम्प्लीमेंटेशन, धारण। जब हम धारण करना शुरू करते हैं, माना कोई परिस्थिति आए, गुस्सा एकदम आना शुरू हो गया, फिर वहां कंट्रोल किया, फिर करते 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 इम्प्लीमेंटेशन, जब धारण करते प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन परिस्थिति में मैं लागू करना शुरू किया, तब क्या हमारे अंदर एक चीज आती है, वो है अनुभव। अनुभव जैसे जैसे मैं इम्प्लीमेंट करती गई करती गई करती गई, अनुभव मिल जाता है, फिर वो है प्रज्ञा। और आध्यात्मिक प्रज्ञा माना जितने मैं आध्यात्मिक चीजों को माना ये जो समझ है जीवन के बारे में, आध्यात्मिकता माना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आत्मा के बारे में, गुणों के बारे में, व्यवहार के बारे में जितना मैं समझती जाऊं, जितना मैं व्यवहार में लाती जाऊं उतना आध्यात्मिक प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। और आध्यात्मिक प्रज्ञा आने के कारण से बुद्धि, आत्मा में बुद्धि जो है वो क्लीन होता जाता है, क्लियर होता जाता, बुद्धि के अंदर वो शक्ति, वो ताकत आ जाता है, डिसीशन पावर। परखने के आधार से हम डिसीशंस लेते हैं ना, तो वो डिसीशन लेने की शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए परखने की शक्ति के लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक प्रज्ञा को बढ़ाने की जरूरत है। और नेक्स्ट शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, जो हम परखते हैं उसके आधार से हम निर्णय लेते हैं, पावर टू डिसाइड, निर्णय लेते हैं। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक तराजू है। ये तराजू कहाँ देखते हैं हम आजकल, तो शॉप्स में तो नहीं मिलता ऐसे, कोर्ट में देखते हैं ना, तो कोर्ट में भी कहाँ होता है ये तराजू, जज के पास एक देवी है, देवी की मूर्ति है, कौन सी देवी है वो, न्याय की देवी, गॉडेस ऑफ जस्टिस कहते हैं, न्याय की देवी है। न्याय की देवी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में तराजू है, राइट हैंड में एक तलवार है ना, और आंखों पर पट्टी है। और आंखों पर पट्टी माना वो न्याय की देवी है, डिसीशन देने वाली, न्याय देने वाली न्याय की देवी है, फिर भी उनके आंखों पर पट्टी है क्यों। तराजू माना इम्पार्शियल है, बैलेंस डिसीशन, अनबायस डिसीशन, निष्पक्ष निर्णय देना वो तराजू है, लेकिन आंखों पर पट्टी क्यों है। बिना देखे देखे डिसीशन दे, डिसीशन देने के लिए बिना देखे दे, बराबर समझना, क्या आंखों पर पट्टी बांधने से बराबर समझते हैं, ऐसा होता तो महाभारत महाभारत नहीं होता, महाभारत इतना बड़ा महाभारत नहीं खड़ा होता है ना, भेदभाव नहीं करना है वो तो ठीक है, लेकिन आंखों पर पट्टी माना क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका अर्थ क्या है। वो तो समझ गए, डिसीशन जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधने से क्या अनबायस्ड हो जाएंगे, ये प्रश्न है। देखे बिना भी पार्शियल हो गए थे ना गांधारी और धृतराष्ट्र, देखे बिना भी, उन्होंने तो अपने दुर्योधन को नहीं देखा था, अपने बच्चों को नहीं देखा था, देखे बिना भी वो पार्शियल हो गए थे ना। माना आंखों पर पट्टी माना ये हमें समझ दे रहा है कि जो दिखता है उस पर 100% विश्वास मत करना, जो दिखता है वो उस पर 100% विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए जो भी हम देखते हैं देख करके तुरंत डिसीशन उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा प्रसंग है जो हम बचपन से सुना करते थे। एक जंगल में एक परिवार बसा करता था, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा था, और वो हस्बैंड जो है रोज शहर जंगल में जाते थे, लकड़ी काट करके बेच करके फिर वापस आते थे, दिन भर नहीं रहते थे वो। तो घर में वो मंगूस पाल के रखा था उस महिला ने। तो एक दिन पानी भरने गई और पानी भर के जब अंदर आई, आ रही थी घर में, तो घर के दरवाजे में मंगूस, ये जो नेवला है, नेवले बहुत कूद कूद करके मालकिन को कुछ दिखा रहा था मुंह से। तो क्या देखा, मुंह पर खून के धब्बे थे। और मालकिन ने क्या सोचा, क्या शायद उसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो तुरंत उसको गुस्सा आया, पानी के जो मटका था तो उसके ऊपर फेंका और अंदर भाग करके देखा, क्या देखा, सांप मरा हुआ था, बच्चा खेल रहा था। फिर अफसोस हुआ, अरे मैंने खामखा उसको मार दिया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आते हैं, देखते हैं, देखने के आधार से हम अपने ही कुछ सोच लेते हैं, शायद इसके कारण से ऐसा हुआ होगा, इसके कारण से इसने ऐसा किया होगा, अपने ही हवा में महल बना लेते हैं। तुरंत डिसीजन लेके तुरंत हम एक्शन ले लिया, फिर बाद में एक आध दिन के बाद पता चलता है कि अरे अरे इसने ऐसा क्यों किया था, ये कारण था ऐसे करने का, फिर हम अफसोस करते हैं। हाँ राइट, सच्चे सामने रखना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए अपने लाइफ, पर्सनल लाइफ में जो भी, वो तो सामाजिक एक ये था, लेकिन पर्सनल लाइफ में जब हम डील करते हैं, ये तो समझ करके चले कि जो हम देखते हैं ना, तुरंत उस पर निर्णय ना लें, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा जांच पींच करके, फिर क्यों किया, कैसे किया, ये थोड़ा सा धीरज करके फिर उसके आधार से निर्णय लेना बहुत जरूरी है ना। तो निर्णय, थोड़ा सा पेशेंस, धीरज धरना निर्णय के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आंखों पर पट्टी माना, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालना, क्योंकि अंतर मन की आवाज हम अक्सर नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंट्यूशन इतना पावरफुल होता है, इतने अंतर मन की आवाज इतना पावरफुल उनको सुनाई देता है, कल क्या होने वाला है वो समझ में अभी से पता चल, कुछ खराब होने वाला है, कुछ महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ऐसे कुछ महसूसता होती है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो अंतर मन की जो शक्ति है ना, जो सुपर कॉन्शियस पावर जो कहते हैं, या अंतर मन इंट्यूशन पावर जिसको कहते हैं, उसको सुनने की आदत डालने की जरूरत है। क्योंकि इंट्यूशन कभी भी रॉन्ग नहीं कहता, गलत नहीं कहता, अंतर मन कभी भी गलत नहीं कहता, जो सच है, जो राइट है, वही कहता है, उसको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन हम कभी कभी उसको उसकी खून कर देते हैं। कैसे खून कर देते हैं? जैसे वो अंतर मन की आवाज कुछ बोलना शुरू किया, उसको चुप करा दे, चुप, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये गलत ही करना है, ये करने से ही अच्छा होगा, उसको चुप करा दिया, तो चुप हो गया। फिर दूसरे कुछ दिनों के बाद फिर वो कुछ बोलने लगा, फिर उसको चुप करा दिया, बार बार चुप कराया, एक दिन ऐसा आता है वो बोलना ही बंद कर देता है, माना उसका खून मैंने कर दिया, उसको पूरी तरह चुप करा दी। तो जब पूरी तरह चुप हो गई तो फिर कहां से बोलेगा, कहां से अंदर से मुझे डायरेक्शन मिलेगा? नहीं, हैमरिंग होता है। तो कोई भी व्यक्ति वो कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको चुप कराया, दूसरे बार उसने बोला, फिर चुप कराया, तो आठवें दसवें बार के बाद ग्यारहवीं बार अगर बोलना, मैं खामा का क्यों है ना, वो उसको जो करना है करने दो ना, ऐसे चुप हो जाएंगे, ऐसे अंतर मन में वो चुप हो जाता है। इसीलिए वो ऐसे बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर हमें सही रास्ते पर चलना है, अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और अंतर मन को सुने कैसे, दूसरी बात, अंतर मन को सुने कैसे, कई बार मन की आवाज या मन में बहुत विचार आते हैं, फिर उसको हम कहते हैं कि शायद ये अंतर मन की आवाज है या मन की आवाज है, इंट्यूशन की आवाज है या माइंड की आवाज है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, इंट्यूशन तभी आता है जब मन शांत हो जाता है। मन अगर बहुत, दो लोग हैं, एक व्यक्ति बहुत बोलने वाला है, वो जो चुप रहता है वो कभी नहीं बोलेगा, ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं ना, मेरा भी कुछ रेस्पेक्ट है, ये बोलते जाओ, अगर वो बोलने की भी कोशिश करे, ये बोलने ही ना दे, तो वो चुप हो जाता है। तो इंट्यूशन ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मन बहुत चलता है, बहुत विचार चलते हैं, जब मन शांत होता है ना तब इंट्यूशन बोलता है ना। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, इसके बारे में बहुत विचार चलते हैं, ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, बहुत विचार चलते हैं, राइट, बहुत विचार चलने दीजिए। चलने के बाद ठीक है, तीन चार ऑप्शंस हैं इस समस्या को का हल करने के लिए, तीन चार ऑप्शंस हैं, सोचते हैं क्या करना है करके फिर मन को शांत कर लीजिए। मतलब मेडिटेशन में जब हम बैठ जाते हैं फिर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के फिर मन की गति को स्लो करते जाते हैं, फिर कुछ मिनटों के बाद कुछ संकल्प या कुछ स्पार्क या कुछ ऐसे थॉट आता है कि ये करना चाहिए, वो है इंट्यूशन की आवाज। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, मन की मन को शांत करना, शांति की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। जब आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो निर्णय ले पाएंगे नहीं, तो निर्णय लेने के लिए मन को शांत करना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। जैसे वैसे तो दिन भर में बहुत सारे निर्णय लेते रहते, अभी चाय पीना है, कॉफी पीना है, अभी नहाना है, बाद में नहाना है, कौन से कपड़े पहनना है, कौन से हेयर स्टाइल करना है, कहाँ जाना, ये छोटे मोटे निर्णय तो सुबह से शाम तक बहुत करते रहते हैं। वो तो चलेगा, चाय के बजाय कॉफी पी लिया उस दिन, चलेगा, वो तो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं उसके लिए मन को शांत करने की आदत डालनी पड़ेगी, शांति की शक्ति को बढ़ाना होगा, तब हम इंट्यूशन की शक्ति को, इंट्यूशन को हम सुन पाते हैं। और नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति। और ये सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति दोनों शक्तियां हैं, लेकिन दोनों अपोजिट है, एकदम विरुद्ध है। सहन भी करना शक्ति है, सामना करना भी एक शक्ति है, लेकिन एकदम अपोजिट है। जहां सहन करना है वहां मैंने सामना कर लिया, सामना जहां करना है सहन कर लिया, तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए कौन सी परिस्थिति में सहन करना है, कौन सी परिस्थिति में सामना करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। सामना करना माना कोई भी परिस्थिति आए तो डट करके हिम्मत से हार ना माने, वो सामना करना हो जाता है ना। तो किसी की माना कुछ भी ऐसे घटना घटते तो मैं हताश निराश होकर के डिप्रेस होकर के जीवन ही खलास कर दूं, किसी ने माना ये हो गया तो मैं अपने जीवन उसके कारण से मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं, ये कायरों की निशानी है ना। वो परिस्थिति उन परिस्थितियों को डट करके हिम्मत से सामना करने की जरूरत है ना। तो लेकिन जाहिर सामना करना है मैंने सहन कर लिया, सहन करना है सामना कर लिया, वो गड़बड़ है। तो सहन कब करना है, सामना कब करना है, सहन कब करना है, सामना कब करना है, अन्याय का सामना करना है, न्याय को सहन करना है। न्याय तो न्याय है ही ना, उसको सहन करने की कोई जरूरत नहीं। अन्याय का डट के मुकाबला करना है, राइट। और सहन, सहन कहां करना है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, डेथ हो जाए उसका सामना करना है, राइट। और अपने से मिस्टेक हुई तो किन से, नेगेटिविटी बढ़ने वाली ऐसे लगता है तो सामना करना है, सुधरने की गुंजाइश है तो वहां सहन करना है, ओके। तो सोसाइटी में जो अत्याचार हो रहा है उसका सामना करना है, घर में तो अच्छा अत्याचार हो रहा है तो क्या करना है, सामना करना है, सहन करना है। उत्तर बता दे आपको, परिस्थितियों का सामना करना है लेकिन लोगों को सहन करना है, परिस्थिति का सामना करना है और लोगों को हमें सहन करना है। कैसे, क्योंकि अगर परिस्थिति लोगों के कारण से बन रहा है तो फिर क्या करें, परिस्थिति को सामना करना है, लोगों को सहन करना है। जैसे कि अगर एक मिसाल, एक प्रसंग देती हूँ मैं आपको। या कुछ साल पहले अफ्रीका नैरोबी जाना हुआ था, तो नैरोबी में रिमाइंड होम विजिट किया था हमने। तो रिमाइंड होम क्या है? बच्चों का जेल है। बच्चों के जेल में तीन पार्ट थे। एक पार्ट में एकदम जो छोटे बच्चे से, एक मास, दो मास, तीन मास, छह मास, जो क्रेडिल में है अभी तक, दूध पी रहे बच्चे हैं, वो थे 8-10 बच्चे। और दूसरे सेक्शन में उससे थोड़े से बड़े बच्चे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, ऐसे बच्चे थे। और तीसरे सेक्शन में 10 साल से 20 साल के बच्चे, जो टीनेजर्स हैं, तो वो सभी वहां तीसरे सेक्शन में थे। तो एकदम छोटे बच्चे हैं, 2 मास, 3 मास, 5 मास, वो वहां कैसे पहुंचे, आप सोच सकते हैं? हाँ, कोई तो डस्टबिन में मिले हुए हैं, कोई के जो बच्चों के दो माएं क्लेम कर रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, उनका कोर्ट केस चल रहा है तो वो बच्चा यहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां अनक्लेम्ड बच्चे हैं, जो अपना कोई अपनाया नहीं है, तो वो ऐसे थे, कोई डस्टबिन में, कोई नॉइस में वहां यहां मिले हुए, या फिर जो कोर्ट केस चल रहे हैं बच्चों को लेकर के, वो ऐसे थे। बीच वाले जो सेक्शन में वो जो बच्चे थे, जो 3 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे जो थे, तो वो छोटी मोटी जो चोरियां किए हुए हैं, किसी के कार चोरी कर ली, कुछ ने ये मतलब छोटी मोटी चोरियां जो जिन्होंने किया है, वो सारे बच्चे। जो बड़े बच्चों के सेक्शन में लड़कियां भी थी, लड़के तो ठीक है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वहां तो बहुत चलता है, तो वो है। लेकिन लड़कियों ने क्या किया, कुछ लड़कियां थी दो जो मासूम दिखने वाली लड़कियां थी, तो उसके बारे में पूछा, ये क्या किया, तो वो बेबी सिटिंग कर रही थी, एक लड़की किसी के घर में नौकरी कर रही थी, बेबी सिटिंग माने किसी के बच्चे को देखभाल कर रही थी। वो मालकिन नौकरी पे जाती थी तो घर में बच्चे की देखभाल, बेबी सिटिंग कर रही थी। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, उस लड़की को बहुत गुस्सा आया मालकिन के ऊपर, तो उसने क्या किया, वो बच्चे को, छोटे से बच्चे के सिर मरोड़ करके उसको मार दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना भी गुस्सा आए, कोई छोटे बच्चे के ऊपर गुस्सा इस रीति से निकाल, सिर मरोड़ करके मार देना, माना एक छोटे से मासूम बच्चे के सिर मरोड़ करके मार देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरे बच्चे वो भी ऐसे किया, वो भी बेबी सिटिंग कर रहे थे, उसको भी गुस्सा आया, वो बच्ची को लेकर के रेफ्रिजरेटर में डाल करके उसको मार दिया। तो ऐसे पर्सनालिटी डिफेक्ट्स, मैं कहने का भाव है, ये उन बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डिफेक्ट्स इतना ज्यादा है, तो इस हद तक वो क्राइम कर सकते हैं। चलो चोरी मार करके किसी को, बड़ों को मार देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटों को सिर मरोड़ करके मार देना एक निर्दयता कह सकते हैं। तो पर्सनालिटी डिफेक्ट्स इतना ज्यादा, वो पर्सनालिटी डिफेक्ट्स क्यों है इतना ज्यादा उन बच्चों में, क्योंकि घर के बैकग्राउंड, आइदर सिंगल पेरेंटेड है, डिवोर्स किए हुए हैं, या आउट ऑफ मैरिज लॉक वो पैदा हुए हैं, या फिर अगर दोनों माँ बाप हैं, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं घर में, तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। बैकग्राउंड का असर बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा होने के कारण से उनके अंदर पर्सनालिटी डिफेक्ट, जो प्यार बच्चों को मिलना चाहिए माता पिता से, न मिलने के कारण से ये समाज में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसको समझते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिमाइंड होम खोला, और उस रिमाइंड होम का वातावरण इतना अच्छा है, उन बच्चों को खूब प्यार मिलता है, वहां काउंसलर्स भी है। और जब बच्चे अंदर रिमाइंड होम में आते हैं, आप सोच सकते हैं, इतना एग्रेसिव होते हैं, इतना चिल्ला रहे होते हैं, इतना पर्सनालिटी डिफेक्ट होता है उनके अंदर, लेकिन वो काउंसलर्स उनको सहन करके, उनको प्यार दे करके इतना उन बच्चों को परिवर्तन किया है। और जो बच्चे वहां आते हैं वो निकलते 2-3 साल तो वहां रिमाइंड होम में होते ही है मैक्सिमम, तो निकलते वो परिवर्तित होकर के निकलता है। अगर जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जल्दी उनको छूट मिल जाता है। और अभी बहुत सारे बच्चे उस रिमाइंड होम से निकल करके समाज में बहुत प्रतिष्ठित पोजीशंस में, कोई नेवी ऑफिसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, मतलब एक बहुत ही इज्जत पूर्वक एक पोजीशन में वो लोग हैं आजकल। और हर साल 15 दिन 10 दिन जितना भी वो निकाल सकते हैं आकर के रिमांड होम में सेवाएं देते हैं, ताकि हमारा जीवन जो परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन को देख करके दूसरे बच्चे भी बदले, वो सेवाएं देते हैं हर साल जितना भी समय निकाल करके। तो एक प्रोसेस जो चल रहा है उसको देख करके हम समझ सकते हैं परिस्थिति जो है समाज के सामने, ये बच्चे बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं समाज के लिए। लेकिन उन बच्चों के परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो सहन शक्ति के आधार, अगर काउंसलर्स सहन नहीं करेंगे, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां के जो रिमांड होम के ऑफिसर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो लोग सहन नहीं करते उन बच्चों को, तो परिवर्तन कैसे होंगे, है ना। लोगों को हमें सहन करना पड़ेगा, परिस्थिति को हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, परिस्थिति ऐसा है चलने दो, नहीं, परिस्थिति को हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति को सामना करने के लिए हर बार गुस्से के आधार से, क्रोध के आधार से हम सामना नहीं करते, गुणों को आधार बना करके सामना करते हैं, तब हमें सफलता मिलता है। अक्सर करके प्यार की शक्ति के आधार से, स्नेह की शक्ति के आधार से हम सामना बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये समझना होगा, परिस्थिति को सामना करना है और लोगों को हमें सहन करना है, और सामना करने के लिए भी नेगेटिविटी को आधार बना करके सामना नहीं करना है। सामना करने के लिए अगर कोई अन्याय चल रहा है, दंगा फसाद करके मैं परिवर्तन ला सकती हूँ समाज में, नहीं ला सकते। गुणों को आधार बना करके, फाउंडेशन में हमेशा गुण होना चाहिए, तब हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और लास्ट शक्ति है सहयोग देने और लेने की शक्ति। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गोप गोपियां मिल करके इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाए थे, ऐसे ही समाज में जब हम रह रहे हैं हमें लेना और देना बहुत जरूरी है। सहयोग तो चाहिए हम सभी को, सहयोग चाहिए तो क्या मांगने से मिलता है सहयोग? थोड़ा बहुत हेल्प कर लो ना प्लीज, थोड़ा बहुत सहयोग दे दो ना प्लीज, मांगने से मिलेगा? हाँ, एक आध बार तो मिल जाएगा, मदद कर भी लेंगे, लेकिन हर बार मैं मांगती रहूं, मैं सहयोग ना दूं तो चलेगा? नहीं, देने से मिलता है। इसलिए जितना हम सहयोग देते जाएंगे उतना हमें सहयोग मिलता जाएगा। और दूसरी बात, सहयोग प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। मैं रफली बोल करके उसको उससे सहयोग ले सकते, ऑर्डर मार करके सहयोग ले सकती हूँ, ठीक है, नौकर है, लेकिन बार बार मैं कटु वचन बोलती रहूं, बार बार डांटती रहूं तो सहयोग मिलेगा? एक दिन कौन नौकरी करेगा आपके पास, जाओ। इसीलिए हर व्यक्ति, भले वो काम कौन क्या करता है वो बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते भी हमें हर व्यक्ति का सम्मान रखना बहुत जरूरी है। एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए झाड़ू पोछा लगाने वाले का भी अपना महत्व है, और बड़े मशीन को चलाने के लिए एक स्क्रू का भी अपना महत्व है। स्क्रू निकल जाए तो निकल जाने दो ना, वो छोटा सा है, स्क्रू निकल जाने पर वो पूरा बड़ा मशीन भी बंद हो जाता है ना। तो इसीलिए हर व्यक्ति का सम्मान रखना बहुत जरूरी है, तब जाकर के गोवर्धन पर्वत जैसे बड़े से बड़े कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, है ना। तो ये है अष्ट शक्तियां। इन अष्ट शक्तियों को जब हम जीवन में संपूर्ण रीति से धारण करते हैं, अभी तो कभी हम सहन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी हमारे अंदर समेटने की शक्ति है, तभी कभी व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, कभी मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, है ना, निरंतर नहीं है, हमेशा जिस परिस्थिति के आधार से जो शक्ति मुझे प्रयोग करना है वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो अभी समझ के आधार, समझ तो मिल गई ना अभी, तो इसीलिए समझ के आधार से निरंतर परिस्थिति के अनुसार जिन शक्तियों को हम हमें प्रयोग करना है वही प्रयोग करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण रीति से हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, ये है अष्टचक्र प्रैक्टिकल, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा, परमात्मा, मेडिटेशन, ये सब ठीक है, जीवन में कितना उतारा है इससे पता चलता है हमारे व्यवहार में, कैसे हमारे अंदर परिवर्तन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है आध्यात्मिकता का। ठीक है, ओम शांति।